हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत के कार्यक्रम में। हम दूसरे अध्याय के अंतिम छोर तक पहुंच रहे हैं और भगवान ये जो सांख्य योग का दर्शन अर्जुन को इस दूसरे अध्याय में दे रहे हैं, इसमें हर एक श्लोक में भगवान बाकी अध्यायों का एक संक्षिप्त, जिसे हम रूपरेखा कह सकते हैं, एक संक्षिप्त रूपरेखा एक एक श्लोक में, एक या जिसे एक सैंपल बोल सकते हैं, नमूना, वो भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते हमने श्लोक में ये समझा कि एक भोगी एवं एक योगी में अंतर क्या है। दिन और रात इसका उदाहरण देते हुए भगवान ये हमें समझाए। तो अर्जुन का अब आगे का ये प्रश्न है कि अब एक अभक्त है और एक योगी, इसकी परिभाषा तो भगवान ने दे दी, या इन दोनों में अंतर तो भगवान ने दे दिया, परंतु एक जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्त उसके क्या लक्षण होते हैं। हालांकि अब इस श्लोक तक अर्जुन भक्ति योग के विषय में डायरेक्टली भगवान से नहीं सुने हैं, हाँ कुछ यहां वहां भक्ति योग के विषय में सुने हैं, परंतु अब तक एकदम ठोस डायरेक्ट कृष्ण भक्ति इसके बारे में भगवान ने अर्जुन को नहीं बताया। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं वो अर्जुन की मनस्थिति को जानते हुए, और अर्जुन जो धीरे धीरे अब भगवान के श्रीमुख से सुन रहे हैं, तो भगवान के गुणों को पहचानते हुए अब अर्जुन मन ही मन कृष्ण भक्ति की लालसा कर रहे हैं। हालांकि अभी वो मुख से कहे नहीं है कि आप ही परम पुरुष भगवान हो, वो तो 11वें अध्याय में जब वो विश्वरूप दर्शन देखेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि अरे जिनको मैं अपना सखा मानता था वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और जैसे 7वें अध्याय में भी भगवान ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया, तो अब तक अर्जुन हालांकि उस भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रभावित हो रहे हैं। जैसे अर्जुन ये अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि पहले अध्याय में, क्योंकि पहला अध्याय विशेष रूप से अर्जुन उवाच है, और कितने श्लोक पहले अध्याय में, कितने श्लोक थे, 46 श्लोक पहले अध्याय में, और इस अध्याय में 72 श्लोक। तो अर्जुन और एक एक श्लोक, जैसे हम इनकी चर्चा कर रहे थे कि एक एक श्लोक इंग्लिश में जैसे बोलते हैं लोडेड विथ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एंड विजडम, आप लोगों को सुनाई दे रहा है पीछे तक, आज थोड़ा मेरा एम्प्लीफिकेशन कम है। तो हरे कृष्णा, तो एक एक श्लोक भगवान उसके अंदर बहुत ही मार्मिक तत्व, सैद्धांतिक दार्शनिक तत्व ये सब प्रस्तुत करते हुए, तो धीरे धीरे अर्जुन का जो आकर्षण है भगवान के प्रति वो बढ़ते जा रहा है। हालांकि अर्जुन की शंकाएं दूर हो रही हैं, और फिर भी अर्जुन कि लालसा ज्ञान के लिए बढ़ती जा रही है। अभी इसके बाद अर्जुन के प्रश्न खत्म नहीं होने वाले, और अलग अलग लेवल्स के प्रश्न होंगे अभी अर्जुन के, और रिफाइंड क्वेश्चंस होंगे अर्जुन के, एडवांस्ड क्वेश्चंस होंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो तो हो गया अर्जुन की लालसा ज्ञान की लालसा, कि मैंने केवल युद्ध करूं या न करूं, बस इतना ही प्रश्न पूछा था, लेकिन मुझे तो भगवान उस प्रश्न को लेकर बहुत ही गूढ़ सिद्धांत समझाने लगे हैं, कर्म के विषय में, स्वधर्म के विषय में, और इंद्रियों के विषय में, भोगी के विषय में, योगी के विषय में, दोनों में अंतर क्या है। तो एक स्वाभाविक जो मनुष्य है वो जब ये सुनता है कि अरे भाई, जैसे मान लीजिए एक भौतिक उदाहरण आपको दें कि आप कहीं रास्ता भूल गए हो और आपने किसी से रास्ता पूछा कि द्वारका सर्कल कहां पर है, तो वो व्यक्ति एक लाइन में भी आपको उत्तर दे सकता है, सीधे जाओ राइट, ये द्वारका सर्कल। और कई होते हैं वो विस्तार से आपको, आपके साथ गाड़ी में बैठ के आपको उत्तर देंगे, उसका वहां तक लेकर भी जाएंगे। तो अभी आपने जो उसको प्रश्न पूछा कि द्वारका सर्कल कहां पर है, वो प्रश्न का उत्तर तो आपको पहले ही मिल चुका है, लेकिन अब उस व्यक्ति से आप थोड़ा प्रभावित हो गए कि इसको कोई आवश्यकता नहीं थी कि इतना विस्तार से मुझे सब कुछ समझाना कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है द्वारका सर्कल का। मान लो बताना शुरू करे कि भगवान द्वारका में भी आए थे, वहीं से नाम मिला है द्वारका, वो सब बताना शुरू कर दे, तो मन में अरे टाइम निकाल कर मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए अर्जुन मन ही मन वो भगवान के भक्त बनते जा रहे हैं। तो इसलिए अब जो हमारे आचार्य हैं वो अर्जुन की ऐसी मनस्थिति, भगवान से आकर्षित हुई मनस्थिति को लेकर ये प्रश्न कि अब अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि फिर कृष्ण भक्त और योगी में क्या अंतर है, क्योंकि अवश्य ही उन दोनों में भी कुछ अंतर होगा। तो इसका उत्तर देते हुए अब ये श्लोक आज का, श्लोक क्रमांक 70, भगवान कह रहे हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्य माणम का अर्थ है कि पूर्ण रूपेण जब कोई वस्तु भर जाती है, when something gets completely filled, आपूर्य माणम। और अचल प्रतिष्ठम, इसके बावजूद वो वस्तु अचल या अटल रहती है कि डगमगाती नहीं, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित रहती है। कौन सी स्थिति में? अटल स्थिति में। इवन दो दैट थिंग इज कंप्लीटली फिल्ड बट स्टिल इट इज स्टेडी। तो ये पहली लाइन, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कौन सी वस्तु है? समुद्र। कौन सी वस्तु है? समुद्र। समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत्, कि जैसे समुद्र के अंदर कितनी सारी नदियां प्रविशंती प्रवेश करती रहती है हर एक सेकंड समुद्र के अंदर। तद्वत कामायम प्रविशंती सर्वे। उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त होता है उसका जो मन है उस समुद्र के समान अटल अचल प्रतिष्ठित रहता है, चाहे कितनी भी भौतिक इच्छाएं उसके समुद्र रूपी मन में प्रवेश करती जाएं नदियों के समान। लेकिन भगवान यहां पर कह रहे हैं, यम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। परंतु जो काम कामी है, जो कामनाओं का कामी है, वन हु इज डिजायरस ऑफ डिजायर्स, काम कामी, वो व्यक्ति वो कभी अचल प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। दैट पर्सन कैन नेवर बी फिक्स्ड और स्टेडी, हु वन हु इज डिजायरस ऑफ फुलफिलिंग वन्स डिजायर। तो बहुत ही सूक्ष्म मुद्दा यहां पे भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण हमारे इच्छाओं के संदर्भ में दो सूक्ष्म मुद्दे भगवान क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये हुआ इसका शब्द विच्छेद। अब पूरा अनुवाद इस श्लोक का इस प्रकार से है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो ध्यान में रखिएगा कि यहां पर इस अनुवाद में श्रील प्रभुपाद ने दो दफा निरंतर शब्द का इस्तेमाल किया है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियां और उसकी तुलना निरंतर इच्छा जो मन में प्रवेश करती रहती है, तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण आज का इस श्लोक का, वो उदाहरण हमारे सामने रखते हुए हमको ये श्लोक समझना है। और केवल उदाहरण सामने रखते हुए नहीं, अपने आप को भी, हमारे ऐसे मन को सामने रखते हुए और जो ऐसी नदियों के समान ये जो इच्छाएं हैं मन में प्रवेश कर रही हैं हर एक सेकंड, उसको ध्यान में रखते हुए इस श्लोक को समझना है। तो अब सबसे पहला प्रश्न ये है अर्जुन की, किस बात पर भगवान ने यह उपदेश दिया। बहुत ही भगवान जो हैं केवल अच्छे प्रवक्ता नहीं बल्कि बहुत अच्छे श्रोता हैं। इसलिए ये कहा गया है कि यदि किसी को बहुत अच्छा प्रवक्ता बनना है तो सबसे पहले उसे अच्छा श्रोता बनना है। वन हु वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड स्पीकर हैज टू बिकम अ गुड लिसनर। तो आज के श्लोक की संख्या कौन सी है, 70। तो भगवान ने देखिए कौन से अर्जुन के द्वारा कहे गए श्लोकों को याद करते हुए ये आज का श्लोक और इसका सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो 2.5 में अर्जुन ने भगवान के सामने एक ये कारण दिया था युद्ध नहीं करने का, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो यहां पर अर्जुन बोल रहे थे कि ठीक है, दोनों श्लोक हम ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो भगवान ये दो श्लोक याद कर रहे हैं अर्जुन द्वारा कहे गए, 2.5 और 2.8। तो 2.8 में राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम और भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो यहां पर अर्जुन भगवान से कहे कि दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो या तो हम युद्ध जीतेंगे या हम युद्ध हारेंगे। तो अर्जुन कहते हैं कि यदि युद्ध जीतेंगे तो वो युद्ध, जीता हुआ युद्ध अर्थात हस्तिनापुर का राज्य जो भोग है वो किस प्रकार का होगा? रक्त से सना हुआ, रुधिर प्रदिग्धान। किनके रक्त से सना हुआ? कौरवों के रक्त से सना हुआ। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं कि जिस राजगद्दी और जिस महल में हम रहेंगे चारों ओर वहां पर कौरवों के रक्त के चिन्ह सने हुए दिखाई देंगे। तो क्या फायदा ऐसे भोग का? ऐसे भोग का फायदा क्या? मतलब ये इस प्रकार से है जैसे कि मान लो कि कोई बहुत बड़े बंगले में रह रहा है लेकिन वो बंगला जो है भूत प्रेत से हॉन्टेड है, तो बंगला बहुत बड़ा, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा डर लगेगा, है कि नहीं? इसलिए ये भूत प्रेत के विषय में जब बताते हैं तो बड़े बड़े बंगले बताते हैं वो लोग, छोटे छोटे अपार्टमेंट नहीं बताते वो लोग। इतने सारे कमरे होंगे और एक दरवाजा ऐसे खुलेगा आवाज करते हुए, एक खुलेगा ही नहीं। तो ये अर्जुन ये बता रहे हैं 2.5 में, ये बता रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा हस्तिनापुर का राज्य महल जो हम जीतेंगे वो इनके रक्त से सना हुआ रहेगा। ये हर समय इनका प्रकोप, ये मरे हुए कौरव जो हैं, इनकी यादें और भयावह यादें, क्या फायदा ऐसे भोग से? तो बहुत वैलिड पॉइंट अर्जुन का था ये। तो फिर मानो कोई अर्जुन को कहे, अच्छा ठीक है, मान लो कि तुम नहीं जीते, हार गए। तो अर्जुन कहते हैं कि तो यदि मैं हार गया तो फिर स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, कि स्वर्गलोक का भोग मुझे मिलेगा, वो भी क्षणभंगुर है, वो भी कब तक रहेगा मेरे पास? तो अर्जुन इन दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण को ये कहे कि यहां पृथ्वी में जो भोग मुझे मिलेगा जीतने के पश्चात वो मेरे किसी काम का नहीं, और मरने के पश्चात स्वर्ग का जो भोग है वो क्षणभंगुर है, आप जानते हैं। तो भगवान अब भोग, उस भोग, जैसे पिछले श्लोक में एक भोगी और योगी में अंतर हमने देखा था, तो भगवान अब इस भोग शब्द को लेकर अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम ये भोग शब्द, ये भोग को लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों? व्हाई आर यू मेकिंग अ फस आउट ऑफ एंजॉयमेंट? भोग का अर्थ क्या है? एंजॉयमेंट। तो मान लो कि जो भगवान ऐसा बोल रहे हैं तो कोई थर्ड पार्टी सुनेगा, बोला मतलब? तो भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि डोंट मेक अ फस आउट ऑफ एंजॉयमेंट देन एंजॉय, क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? भगवान विशेष रूप से ये अर्जुन को बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु, चाहे वो एंजॉयमेंट हो चाहे सफरिंग हो, उसके प्रति अटैचमेंट और एवर्जन, ये दोनों अटैचमेंट है, राग द्वेष विमुक्तश्च। तो ये दोनों राग और द्वेष जो है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन ऑफ अटैचमेंट, है कि नहीं? तो इसलिए आज का श्लोक क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम वैसे व्यक्ति बनो कि चाहे भोग आए या भोग नहीं आए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू ट्रांसेंड द एंजॉयमेंट और नो एंजॉयमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू गो बियॉन्ड दैट, दैट शुड नॉट अफेक्ट यू, वो तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाहिए। इसलिए समुद्र का उदाहरण दिया। तो ये एक जो सिद्धांत है, इसलिए हालांकि इससे भी ऊंचा सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थापित किया कि कैसे उस भोग को हम कृष्ण भावना भावित बनाए। और हां, इस समुद्र के उदाहरण में हमारे आचार्यों ने बताया है कि कैसे एक समुद्र भी वो करता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि आज का जो उपदेश भगवान दे रहे हैं समुद्र के उदाहरण के द्वारा, वो अर्जुन के इसी अध्याय के इन दो श्लोकों के उत्तर को देते हुए, समझ में आ रहा है आपको कि दोनों श्लोक में अर्जुन भोग के विषय में जो बता रहे हैं। तो अब आज के श्लोक का उदाहरण हम लेते हैं, बहुत सरल है। नदियां ये है भौतिक इच्छाएं, और समुद्र का उदाहरण दिया गया है प्रशांत मन, केवल मन से नहीं और केवल शांत मन से भी नहीं, प्रशांत। प्रशांत का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण शांत, दैट माइंड विच इज नॉट सिंपली एट पीस, दैट माइंड विच इज सुप्रीमली एट पीस। प्र का अर्थ होता है स्पेशल, तो बहुत ही स्पेशल तरीके से जिसका मन शांति को प्राप्त हो चुका है, उसका मन उस समुद्र के समान है, चाहे जितनी भी नदियां उसमें प्रवेश करती रहें, उसका मन वो प्रशांत रहता है, जैसे कि प्रशांत महासागर है ना, क्या है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को क्या कहा गया है, प्रशांत महासागर, am I right? पैसिफिक ओशन को हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते। तो क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा ओशन है ये जो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन, ये सबसे बड़ा है। हमें याद है हम को सिखाया गया था ज्योग्राफी में कि पैसिफिक ओशन में एक ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच। ट्रेंच का अर्थ होता है कि गहराई या गड्ढा, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये पैसिफिक ओशन के अंदर ये जो गड्ढा है, ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा, इतने नीचे ही। तो सोचिए कितना पानी है, ये प्रशांत महासागर कितना गहरा और कितना वॉल्यूम पानी है इसके अंदर। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि एक जो कृष्ण भक्त है, उसका मन इस प्रशांत महासागर से भी अधिक गहरा और हैवी ड्यूटी और अचल अटल ऐसा है। हरे कृष्ण, विजडम फ्रॉम अ लेक, स्टोरी टाइम। तो एक बार एक व्यक्ति एक साधु पुरुष के आश्रम में जाता है और अपनी समस्याओं को लेकर कि मन नहीं लग रहा है काम में, परिवार में, इस पूरे संसार में इतने सारे दुख आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो ये कई बार होता है ऐसी स्टोरीज में जो उत्तर होते हैं बहुत ही ग्राफिक होते हैं, ऐसे डेमोंस्ट्रेट करके उत्तर देते हैं। तो साधु मार्ग पुरुष क्या करते हैं कि एक छोटे से कुल्लड़ में पानी लेकर आते हैं। तो छोटे से कुल्लड़ जानते हैं ना आप लोग, मिट्टी का बर्तन, तो उसमें पानी लेकर आते हैं और उसको कहते हैं कि एक एक घूंट पियो ये पानी। तो उसने एक घूंट पिया, कैसा लगा, बोला बहुत मीठा है, आपके आश्रम का जल बहुत मीठा है। फिर उन्होंने क्या किया कि इतनी मुट्ठी भर नमक उसमें डाल दिया वो कुल्लड़ भर जल में और उसे मिला, अब पियो। तो बोला पियो। तो अब साधु पुरुष बोल रहे हैं तो पिया, इतना खारा लगा उसको, उधर ही थूक दिया उसने, बोला क्या कर रहे हैं आप। तो अब उन्होंने उतना ही मुट्ठी नमक लिया, बोला ये लो और ये जो हमारे आश्रम का सरोवर है इसमें जाओ डालो ये। तो उसमें जाके उसने डाला, बोला मिला दिया पूरा। बोला कैसे मिलाएंगे, मतलब मिल गया होगा ना। बोला अब उसका सरोवर का जल पियो। तो क्या हुआ, उसको मीठा ही लगा, मीठा लगा कि नहीं, डाउट है मीठा लगा उसको। तो साधु पुरुष ने कहा उत्तर मिल गया, मिल गया। जब तक तुम्हारा मन वो छोटे से कुल्लड़ के समान रहेगा तो ये भौतिक संसार की जो तकलीफें हैं वो नमक के समान है। हा? वो हर समय तुम्हारे छोटे से मन को तकलीफ देती रहेंगी। लेकिन जैसे ही तुमने अपना मन इस विशाल सरोवर के समान बना लिया, बृहद बना लिया, तो इतना सा नमक क्या कहते हैं दरिया में, तो क्या। इसलिए आज भगवान ने दरिया का एग्जाम्पल लिया। एक इंग्लिश का टर्म है फ्लॉटसैम, फ्लॉटसैम जेटसैम, फ्लॉटसैम जेटसैम होता है। समुद्र में जब जहाज जाते हैं तो ये पैसेंजर्स कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, खाने पीने की वस्तुएं, कुछ कोक का टिन फेंक दिया, कुछ चिप्स वेफर्स का रैपर्स फेंक दिया, तो ये देखते हैं समुद्र के ऊपर ये तैरते दिखते हैं। क्या इनको बोलते हैं फ्लॉटसैम, तैरते हुए दिखते हैं। लेकिन समुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरे वो ये जो फ्लॉटसैम है क्या, ये एक ना टिन, किसी कोक का टिन या किसी पोटैटो वेफर्स का रैपर, ये क्या है? अरे वो पूरा जहाज उसके अंदर चला जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसको? समुद्र को। बड़े बड़े टाइटैनिक, ये वो कहां अभी लोग जा जाके घुस घुस के देखते हैं, कुछ मिला उसका टुकड़ा, ए टाइटैनिक का टुकड़ा मिला, चलो उसके ऊपर पिक्चरें बनाते हैं फिर। लेकिन कोई समुद्र को नहीं देखता, अरे समुद्र इतना बड़ा। तो यहां पर देखिए कि ये जो कहानी हमने ली जिसके अंदर समस्याएं कम नहीं होंगी, हाँ कलयुग में नमक की मात्रा बढ़ती जाएगी, वो मुट्ठी भर नमक नहीं रहने वाला कलयुग में, फिर वो दो मुट्ठी, फिर बाद में बोरी भर के, फिर और गोदाम भर भर के। तो जैसे कलयुग में नमक की मात्रा बढ़ रही है तो हमें क्या करना होगा, सरोवर, बड़ा बड़ा सरोवर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसे अवतार जिनका आविर्भाव हम कल मना रहे हैं, ये ऐसे अवतार हैं जो कि हमारे मन को वो बृहद कर रहे हैं। ही इज मेकिंग अवर विजन, अवर माइंड वेरी ब्रॉड, सो दैट ऑल दी स्मॉल सॉल्ट लाइक प्रॉब्लम्स कैन हैव नो इफेक्ट ऑन अवर ब्रॉड, यू नो, क्रिस्टल क्लियर वाटर लेक। सो दैट इज द एग्जाम्पल। अब ये एक चित्र है जहां पर ये नदी जा रही, प्रवेश कर रही समुद्र के अंदर। तो बहुत ही सुंदर एनालिसिस यहां पर है हमारे सामने कि जो समुद्र है वो नदियों के जल को स्वीकार करता है, चाहे कितना भी जल आता रहे, और फिर क्या करता है, उसको प्रिजर्व करता है। वो जो सॉल्ट है वो सॉल्ट उस जल को प्रिजर्व करता है, और प्रिजर्व करने के बाद फिर वो अपने लिए नहीं रखता, वो फिर से बादलों को ऑफर कर देता है वो समुद्र, है कि नहीं। फिर बादल वो वर्षा के रूप में वो मीठा जल हम मनुष्यों को वो बादल देता है, और फिर हम वो जल ग्रहण करते हैं। इतनी सारी नदियां उन बादलों के वर्षा के वजह से पैदा होती है, फिर से वो समुद्र में। तो ये जो समुद्र का कार्य क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो समुद्र जो है वो बहुत ही निस्वार्थ एक जीव है, कि उसके अंदर भर भर के नदियां जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, और समुद्र वो उसका ड्यूटी क्या है कि उन सब को वो वहां पर प्रिजर्व करे, और फिर उसको वाष्प के रूप में वो बादलों को दे, और फिर बादल जो हैं वो हमें वापस मीठा जल। तो ये उदाहरण दिया गया। उसी प्रकार से जो कृष्ण भक्त है, जिसकी तुलना आज समुद्र से की गई है, तो जो कृष्ण भक्त है वो उस समुद्र के समान है। जितनी भी भौतिक इच्छाएं, चाहे कोई भी इच्छाएं प्रवेश कर रही हैं उसके मन में, तो वो क्या करता है, वो उसे शुद्ध करता है। उसको प्रिजर्व करके उसे शुद्ध करता है, और शुद्ध कर कर वो कौन से बादल को ऑफर करता है? घनश्याम, जिनकी तुलना इस बादल से की गई है। तो ये जो भक्त है भगवान का, वो सब भगवान को अर्पित करता है, और फिर ये जो घनश्याम बादल हैं, ये इसे शुद्ध बनाते हैं, हमारी सारी इच्छाओं को ये शुद्ध बनाते हैं। और फिर वो जो बादल है, समुद्र से लिया हुआ जल, वो जहां जहां जरूरत है वहां वहां वो बादल जल फैलाता है। तो श्रील प्रभुपाद वो उस समुद्र के समान। अब देखिए, समुद्र का एक और उदाहरण हम ये समझेंगे कि चाहे कई बार कहीं पर अकाल पड़ जाता है तो नदियां सूख जाती हैं, तो कई जगहों से नदियों का इंटेक कम हो जाता है समुद्र के अंदर अकाल पड़ने के वजह से। तो अब ऐसा नहीं कि समुद्र में नदियों का इंटेक कम हुआ है तो समुद्र का लेवल कम हो गया, या नदियों का इंटेक ज्यादा हो गया तो समुद्र का लेवल बढ़ गया। नहीं, समुद्र वैसा का वैसा रहता है। इसलिए क्या कहा है, अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः। तो उसी प्रकार से अब श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दिया गया है कि जब श्रील प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, अगले महीने का रेंट कौन कब कैसे भरेगा कुछ पता नहीं, जो एक टाइपराइटर लेकर आए थे वो भी चोरी हो गया, कुछ एकाध जो भक्त बने थे वो भी एकाध छोड़ के चले गए, वो जहां पर वो मिश्रा जी उनके योगा सोसाइटी में प्रभुपाद रह रहे थे उन्होंने उन वहां से खाली करवा दिया, कुछ भी नहीं, बस न्यूयॉर्क में टॉमकिन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद क्या कर रहे थे, कीर्तन। कोई करताल नहीं, कोई मृदंग नहीं, कोई साउंड सिस्टम नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम स्केड्यूल नहीं, प्रभुपाद बैठ के कीर्तन कर, कुछ भी नहीं प्रभुपाद के पास, कुछ भी क्या नहीं, भौतिक कुछ भी कुछ नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृढ़ विश्वास, श्रद्धा अपने गुरु के ऊपर, वो प्रभुपाद के पास था। और जब प्रभुपाद को भगवान ने सारा ऐश्वर्य दिया कि वही प्रभुपाद अब इतने 108 केंद्र पूरे विश्व में, और बड़े बड़े केंद्र यहां भारत में, मायापुर, वृंदावन, बंबई, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनाए प्रभुपाद ने, लेकिन प्रभुपाद कर क्या रहे थे, वही प्रभुपाद ने, ऐसा नहीं कि फिर मंत्र चेंज कर दिया, प्रभुपाद वही ट्यून जो टॉमकिंस फेयर पार्क में गा रहे थे वही ट्यून प्रभुपाद लास्ट तक वही ट्यून गाते थे, वही हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इससे पहले प्रभुपाद जो बिजनेस, प्रभुपाद जो पहले गृहस्थ थे, उनका जो फार्मेसी का बिजनेस था वो सब चोरी चला गया, सब कुछ वो चोरी हो गया, उनके परिवार वालों ने बहिष्कृत कर दिया, हर एक दृष्टिकोण से प्रभुपाद एकदम जिसको कहते हैं अकिंचन बन गए। और उम्र क्या, 70 वर्ष। ऐसा नहीं कि कोई बहुत नौजवान व्यक्ति जो इसको सब ये तकलीफों को झेल पाए, 70 वर्ष के श्रील प्रभुपाद। तो ये सब जब प्रभुपाद बाहरी रूप से, प्रभुपाद ने कहा भी जब ये बंबई में जब प्रभुपाद थे एक गृहस्थ के रूप में, जब अपना बिजनेस वहां बढ़ाने के लिए जब गए थे, तो पता लगा कि इलाहाबाद में जब उनकी जो भी जो फार्मेसी वगैरह सब कुछ चोरी चला गया, किसी ने धोखा देके प्रभुपाद का सब कुछ ले लिया, तो प्रभुपाद मुस्कुराए, ये सुनने के बाद प्रभुपाद मुस्कुराए और प्रभुपाद ने कौन सा श्लोक कहा, यस्या हम अनुग्रहणामि हरिषे तद्धनम शनै, कि भगवान श्री हरि की जो सबसे प्रथम और सबसे विशेष कृपा होती है अपने भक्त के ऊपर, कि भगवान उस भक्त का सब धन हर लेते हैं। हरे कृष्णा, वेलकम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसका अर्थ क्या है, धन का अर्थ ये नहीं कि जो बैंक में धन है ये वो, वो सारी चीजें जो हमको हमारे असली धन से नहीं मिला रही उसको हर लेते हैं। तो प्रभुपाद उस समय भी भगवान श्री कृष्ण, ऐसा नहीं कि उस समय प्रभुपाद कहने लगे कि अरे भाई मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं, तैयारी आपके प्रचार के लिए कर रहा हूं, ये सलाह दिया तूने मेरे प्यार का। प्रभुपाद ऐसे नहीं कहे भगवान को, प्रभुपाद वॉज एज सरेंडर्ड वेन एवरीथिंग वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम एंड ही वॉज द सेम सरेंडर्ड वेन एवरीथिंग वॉज गिवेन टू हिम, ही वॉज द सेम। इसको क्या कहते हैं? समुद्र की तरह अचल। और एक बहुत ही रेलेवेंट पास्ट टाइम भी है इसके संदर्भ में, एम्स्टरडैम में जो हमारा इस्कॉन का केंद्र, वहां पर प्रभुपाद पहली दफा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, आप सोचिए एम्स्टरडैम यूरोप में एक ऐसा देश है जहां पर हर प्रकार के कुकर्म होते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का इंस्टॉलेशन सेरेमनी प्रभुपाद करवा रहे हैं। और क्योंकि सारे भक्त वो भी जानते नहीं थे कि है कौन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, लेकिन प्रभुपाद को जानते थे, तो प्रभुपाद अगर इंस्टॉल करा रहे हैं तो बोनोफाइड ही होगा। अरे हम लोग नहीं जानते थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये तीन कौन है, ऐसे क्यों खड़े हैं, ऐसे क्यों दिख रहे हैं हाथ ऐसे करके, बड़ी बड़ी आंखें क्या है, सोचो वो लोग क्या जानते होंगे। तो एम्स्टरडेम में ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी, और तो उन्होंने जब ये सुना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंस्टॉलेशन सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट होती, तो उन्होंने जब ये सुना कि बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी है ये, तो उन्होंने मीडिया को बुलाया, लोकल वहां के मीडिया को बुलाया। तो सब मीडिया कैमरा वैमरा लेकर की कुछ तो बहुत ही चित्र विचित्र यहां पर कुछ होने वाला है, इंस्टॉलेशन सेरेमनी, यज्ञ और ये सब, तो वो लोग सब तैयार थे मीडिया कैमरा वगैरह लेकर। और प्रभुपाद अचल एकदम, उनको कोई कैमरा वैमरा से ऐसा नहीं कि कैमरा के सामने थोड़ा अच्छे से अपना प्रेजेंटेबल होना चाहिए, हाँ प्रभुपाद हर समय प्रेजेंटेबल ही होते थे, लेकिन उसकी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अब प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो क्या हुआ कि जो टेंपल प्रेसिडेंट थे उनको इंस्टॉलेशन सेरेमनी, यहाँ पर हमने देखी होगी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उस समय तो प्रभुपाद ने बहुत सिंपल रखा था। तो प्रभुपाद ने बोला था कि फ्रूट्स, यज्ञ कुंड जो होता है यज्ञ कुंड के चारों ओर फ्रूट्स होना चाहिए। तो टेंपल प्रेसिडेंट को पूछा वेर आर द फ्रूट्स, तो टेंपल प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आया कि पहले यज्ञ क्या होता है और यज्ञ में फ्रूट्स क्यों रखना है। तो उनको लगा प्रभुपाद को शायद भूख लगी है, तो वो फ्रूट्स काट के प्लेट में लेकर आ गए। प्रभुपाद को क्रोध आ गया, प्रभुपाद बोले क्या चल रहा है। प्रभुपाद को क्रोध क्यों आ रहा था? क्योंकि भगवान के इंस्टॉलेशन में ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ये नहीं कि अपने लिए प्रभुपाद क्रोध कर रहे थे, इसका नमूना आगे हम देखेंगे। तो प्रभुपाद बोले कि यहां के लिए फ्रूट्स, आई वॉन्ट फ्रूट्स फॉर द यज्ञ नॉट फॉर मी। लोग सब डर गए, तो जितने फ्रूट्स थे वो तो काट कूट के दे दिए थे उन्होंने, कोई फ्रूट्स नहीं थे। और ये सब प्रभुपाद वो मीडिया वगैरह सब देख सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो प्रभुपाद वहां पर थोड़ा क्रोधित हुए, तो एक बस कुछ 2-4 दिन पहले वहां पर एक हिप्पी आना शुरू किया था मंदिर में, बड़े बड़े बाल दाढ़ी, और तो वो ऐसे बैठा हुआ सब देख रहा है कि प्रभुपाद झांप रहे हैं इसको। तो वो अपना नए नए आते ना बिना बीड बैग के, खाली बीड्स लेके माला करते हैं, तो ऐसे ऐसे देख रहा है प्रभुपाद को देखा, सभी लोग डरे हुए प्रभुपाद के सामने देख भी नहीं पा रहे, प्रभुपाद इतने क्रोध में। तो ये प्रभुपाद के बगल में बैठा बोलता है जस्ट चैंट हरे कृष्णा। सोचो ऐसे सिचुएशन में सभी भक्त डरे हुए हैं और ये हिप्पी 2 दिन का अभी अंडे से बाहर भी नहीं आया, ये प्रभुपाद को बोल रहा है जस्ट चैंट हरे कृष्णा। अभी इसको पता नहीं था कि ये फाउंडर आचार्य हैं ऐसे कुछ, उसको सब भक्तों ने बताया था जब भी प्रॉब्लम हो जस्ट चैंट हरे कृष्णा, उसने देखा इधर प्रॉब्लम चल रहा है तो प्रभुपाद को बोल दिया उसने। जस्ट चैंट हरे कृष्ण. तो यहां पर देखिए प्रभुपाद की नम्रता. प्रभुपाद ने उसके हाथ से वो बीड्स ली और उसने जो कहा प्रभुपाद चैंटिंग करना शुरू की. वो हिप्पी, सोचिए कि वो हिप्पी के चैंटेड माला को प्रभुपाद ने लिया और प्रभुपाद चैंटिंग करना शुरू की. तो फिर बहुत कुछ हुआ उस सेरेमनी में, बहुत कुछ जो नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ गड़बड़ हो रहा था वहां पर. फिर लास्ट में प्रभुपाद, पूरा सेरेमनी हो गया तो प्रभुपाद अब जाने लगे अपने कमरे पर. तो तभी भी प्रभुपाद थोड़े गुस्से में नाराजी दिख रहे थे. तो फिर जो उनके सर्वेंट थे वो भाग भाग के, प्रभुपाद फीस्ट फीस्ट बनाया है आपने. तो प्रभुपाद ने कहा मेरे कमरे में लेके आ जाओ. तो अब गाड़ी निकल रही थी तो अब ये प्लेट बनाकर प्रभुपाद के साथ ही जाना है. तो ये जल्दी जल्दी प्लेट बनाए, गाड़ी तब तक रुकी हुई थी, प्रभुपाद बैठे हुए अंदर, ये भाग भाग के प्लेट बनी हुई, अब वो टिफिन विफिन तो नहीं, पूरा प्लेट बनी हुई, भाग के तो गिर गए पूरा प्रसाद नीचे. तो क्या करे, वापस जाए, वापस प्लेट बनाए. प्रभुपाद ने देख लिया, प्रभुपाद ने बोला नहीं उसी को उठाओ, उसी को उठाओ, डालो प्लेट में. तो ऐसा कांपते हुए सब प्लेट में प्रसाद डाला, प्रभुपाद के साथ बैठे हैं कार के अंदर. और फिर प्रभुपाद अपने कमरे में गए और प्रभुपाद ने अपना दरवाजा ऐसे थोड़ा सा बंद कर लिया, किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी अभी अंदर जाने की. तो जो रोज प्रसाद से पहले एक भक्त प्रभुपाद का मसाज किया करते थे, मालिश किया करते, तो सभी ने बोला भाई तुम्हारा टाइम है, तुम जाओ पहले अंदर. चलो चलो, सभी एकदम है ना कि भाई जो भी उतरना है इसके ऊपर उतर जाए पहले, तो हम लोग जब एंट्री मारेंगे तो वो गर्मी इतनी चटका इधर तक नहीं पहुंचेगा. तो उनको बोला कि जाओ भाई जाओ, मालिश तुम्हारी ड्यूटी है. तो वो धीरे से डरते डरते सहमे सहमे दबे पांव दरवाजा खोले देखने के लिए कि क्या मूड कैसा है प्रभुपाद. तो वो बहुत चक्का रह गए. प्रभुपाद अपने पलंग के ऊपर अपने दोनों हाथों से प्रभुपाद ने अपने घुटनों को पकड़ लिया, जैसे बच्चे पकड़ लेते हैं, और ऐसे ऐसे बच्चों की तरह रॉकिंग बैक एंड फोर्थ. तो ऐसे ऐसे प्रभुपाद ऐसे कर रहे हैं और चैंटिंग कर रहे हैं, जय गौर निताय, जय गौर निताय, जय गौर निताय. और एकदम खुश प्रभुपाद, हम मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा कीर्तन कर रहे हैं जय गौर निताय, जैसे बच्चे की तरह ऐसे झूला झूलते. तो ये डिवोटी एकदम ये भौचक्का रह गए. तो अभी इतनी हिम्मत आ गई, प्रभुपाद इतने अच्छे मूड में तो मैं क्यों नहीं अंदर जाऊं. तो ये गए अंदर, प्रभुपाद को देखा और फिर प्रभुपाद को सबसे पहले पूछा कि प्रभुपाद इतना सब कुछ मैंने सुना, आप इतने क्रोध में और अभी मैं आपको देख रहा हूं, ये आप बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए पलंग पर झूलते हुए जय गौर निताय क्या कीर्तन कर रहे हो. तो प्रभुपाद ने खाली एक लाइन में इसका उत्तर दिया. क्यों ये स्टोरी हम सुना रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने जो उदाहरण दिया वो एक समुद्र का दिया. तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, एन ओशन लुक्स वेरी टर्बुलेंट ऑन द सरफेस लेवल. सरफेस लेवल पर देखो इतनी लहरें ऊपर नीचे समुद्र में हर क्षण, बट डीप इनसाइड यू गो द ओशन इज काम एंड कंपोज्ड. तो प्रभुपाद ये बता रहे थे कि बाहर से जो तुम मेरे को गुस्से में देख रहे थे जैसे कि समुद्र दिखता है, लेकिन अंदर झांक के देखो, अंदर झांक के क्या चल रहा है, जय गौर निताय, जय गौर निताय, वो कीर्तन चल रहा था. तो ये है एक शुद्ध भक्त जो कि समुद्र के समान, कि बाहर से वो क्रोधित या उत्तेजित ये सब कुछ दिख रहा होगा, लेकिन यदि उस भक्त के अंदर झांक के देखोगे तो वो समुद्र के समान काम एंड क्वाइट, शांत. समुद्र डीप इनसाइड, मैंने इसका अनुभव किया है, इतना काम एंड क्वाइट होता है कि समटाइम्स दैट साइलेंस इज स्केरी, इतना स्केरी होता है वो, उसका साइलेंस इतना इतना शांत होता है समुद्र नीचे डीप इनसाइड। तो ये प्रभुपाद के जीवन का उदाहरण। तो प्रभुपाद ने भी जो कुछ मिला उनको, जैसे समुद्र नदियां स्वीकार करती हैं और फिर बादल को देती है, वैसे प्रभुपाद को जो कुछ प्राप्त हुआ प्रभुपाद ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उसे इस्तेमाल किया। तो अब तो यहां पर भगवान शांति के विषय में बता रहे हैं कि वो व्यक्ति सही मायने में शांत है। तो आपके सामने अभी एक पेंटिंग प्रस्तुत करेंगे, द मोस्ट पीसफुल पेंटिंग। इफ यू कैन फिगर आउट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल पेंटिंग्स, जहां पर इतने खूंखार जानवर आप देख रहे हो, ये चील, गिद्ध, ये लोमड़ी, भालू, और ये नदी जो ऐसे एकदम बहुत ही वाइल्ड बह रही है, वाइल्ड रिवर। तो ये एक स्टोरी है, मैं बताता हूं, भ्रमित मत होइए आप। तो एक राजा ने एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा था, जिसके अंदर उसने कहा that the first prize will be given to one who can paint the most peaceful painting. और इस पेंटिंग को प्राइज मिला। बाकियों ने अभी पीसफुल पेंटिंग अगर आपको कोई बनाने बोले तो आप कैसे बनाओगे? एकदम शांत सरोवर है, सब कुछ वहां पर शांत है, सब मतलब देखते ही आप भी शांत हो जाओगे। तो इसको फर्स्ट प्राइज मिला, क्यों? क्योंकि यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कोने में राजा ने देखा इतना जो कुछ वाइल्डनेस पोर्ट्रे किया गया था इस पेंटिंग में, एक कोने में एक झाड़ी के नीचे एक घोंसले में एक चिड़िया का बच्चा इत्मीनान से सो रहा है। तो राजा ने इसको मोस्ट पीसफुल पेंटिंग क्यों करार दिया? क्योंकि रियल पीस इज अमिड्स ऑल द केओस व्हेन यू आर पीसफुल। सब जगह पर उपद्रव और कोलाहल मचा हुआ है, और उसके मध्य में यदि आप शांत रहोगे तो वो सही मायने में शांति है। ये नहीं कि हिमालय की किसी गुफा में बैठकर जहां पर सब कुछ शांत है और वहां पर कोई व्यक्ति शांत रहता है, तो हाँ वो भी शांति है, लेकिन उससे ऊंचा स्तर शांति का क्या है? जैसे इसका विकृत एग्जाम्पल आप बंबई में देखोगे, लोकल ट्रेन के बगल में वो झोपड़पट्टी में सो रहे हैं, जा रही है लोकल ट्रेन, आ रही है, आवाज हो रही है, वो क्राउड चिल्ला रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, ये इत्मीनान से सो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वहां पर अगर कोई इतना इत्मीनान से सो सकता है कि सारी दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हालांकि वो तमोगुणी, वो शांति है, वो कोई सत्वगुणी शांति नहीं है, वो तमोगुण इतना भारी और इतना गहरा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहां पर ये पेंटिंग का जो मॉरल ये बताया गया है कि अमिड्स ऑल द केओस व्हेन दैट बर्ड वाज पीसफुली रेस्टिंग इन द नेस्ट, वो उस राजा ने देखा, बोला कि हाँ This is the most peaceful painting. तो वही उदाहरण आज भगवान भी दे रहे हैं कि सही मायने में शांत व्यक्ति कौन है, कि सब प्रकार की भौतिक इच्छाएं उसके मन में प्रविशंति यद्वत प्रवेश कर रही है, सर्वे प्रविशंति, लेकिन वो अचल प्रतिष्ठम, वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा। That is real peacefulness. और चैतन्य चरितामृत में उदाहरण है हरिदास ठाकुर इनका, द एपिटोम ऑफ पीसफुलनेस। तो हरिदास ठाकुर के सामने ये जब वैश्या आई, हाँ, तो ये वैश्या कैसी थी? ये ऐसी तेज तर्रार नदी, नदी के समान बहती हुई, एकदम और साक्षात माया देवी और सुसज्जित और काम वासना से परिप्लुत ये वैश्या हरिदास ठाकुर के समक्ष आती है, हरिदास ठाकुर को अपने आप को प्रस्तुत करती है भोग विलास के लिए। और हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया गया है, अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप, और वो भी कैसे समुद्र कि यहां पर आप देख रहे हो कि उसने हरिदास ठाकुर के सामने दंडवत कर सर मुंडवा दिया और वो भक्त बन गई 3 दिन बाद। हरिदास ठाकुर उसे कहे कि भाई मेरा जप बाकी है, आपको जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी, मेरा जप पूरा हो जान दो। तो एक दिन उसने वेट किया, 2 दिन वेट किया, हालांकि किसी ने भेजा था उसको षड्यंत्र रचने के लिए हरिदास ठाकुर उनको उनका चरित्र गिराने के लिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और हरिदास ठाकुर जब किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, और जानबूझ ऐसा नहीं कि हरिदास दूर, ऐसा नहीं हरिदास ठाकुर ने क्या कि अरे तुम इधर घुसी कैसे, दूर हट जाओ ऐसा नहीं। हरिदास ठाकुर बिठाए उसको उधर, बोले बैठो इधर, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, मेरा जब पूरा हो जाता। क्यों हरिदास ठाकुर बिठाए कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसे शुद्ध होगी। तो रोज वह जो वैश्या वह हरिदास ठाकुर का नाम जप, सोचिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर के मुख से कहा गया हरे कृष्ण महामंत्र सुनना, कोई भौतिक इच्छा लेके रह सकता है फिर? तो 3 दिन पश्चात ये वैश्या इतना ज्यादा परिवर्तित हो गई कि उसने हरिदास ठाकुर से कहा कि मैं तो बस आपकी शिष्या बनना चाहती हूं। तो हरिदास ठाकुर ने फिर उनको आदेश दिया है कि ये जो कुटिया है इस कुटिया में रहो, तुलसी महारानी की पूजा करो, और यहां पर फिर वो एक साध्वी बनकर वो जो एक क्या कह सकते कुख्यात वैश्या थी वो वहां पर साध्वी बनकर हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। फिर उस कुटिया में वो केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, तुलसी महारानी की पूजा आराधना किया करती थी। तो ये है एक ऐसे समुद्र जो ऐसे वेगवान नदी को लेकर भी उसको शुद्ध कर देते हैं। सो दिस इज द एपिटोम ऑफ पीसफुलनेस श्रीला हरिदास ठाकुर। तो श्लोक के 2 महत्वपूर्ण विषय हम लेंगे। यदि इन दोनों के ऊपर हम गौर करें तो ये जो 2 टर्म्स भगवान श्री कृष्ण ने यूज किए हैं, काम प्रवेशंती और काम कामी, तो इन दोनों में अंतर है। देखिए काम प्रवेशंती और काम कामी दोनों में अंतर क्या है, अगर इसका ट्रांसलेशन हम देखें तो काम प्रवेशंती का अर्थ है फ्लो ऑफ डिजायर्स, कि इच्छाएं वो आ रही हैं हमारे मन के अंदर, आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, काम प्रविशंती। और काम कामी का अर्थ क्या है, डिजायरिंग टू फुलफिल डिजायर्स। तो दोनों में अब अंतर है कि एक में इच्छाएं अपने आप आ रही हैं और दूसरे में डिजायरिंग टू फुलफिल द डिजायर्स। तो इसको आपको मैं उदाहरण से समझाऊंगा। ये जो 2 चित्र हैं इसमें से क्या समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ये जो पहला चित्र है जो ट्रेन के यहां पर ये रेडी लेकर बेच रहा है, यह काम प्रविशन थी। हाँ, अनुभव किया होगा, ट्रेन में बैठे हैं आप, आपने बुलाया नहीं इसको, कोई टिकट नहीं देता है कि ये सब आके घूमते रहो, ये रेडी वाले आते रहते हैं, चाय 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 चाय, कॉफी 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 कॉफी। कई बार हमारे हरे कृष्ण भक्त जाते हैं जब यात्रा में तो ये चाय कॉफी वाले, अरे साले सर हरे कृष्ण है कुछ बिकेगा नहीं आज, ऐसे बोलते हुए जाते हैं। तो आप बैठे हो, मतलब ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है काम प्रवेशंती। यात्रा के समय ट्रेन में आप सुबह सुबह जप कर रहे हैं, आपका हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, फिर ये नदियां बहती हुई जा रही है, फिर कटलेट 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 हरे कृष्ण कटलेट कटलेट हरे कृष्ण बड़े 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 बड़े, तो आपका हरे कृष्ण चल रहा है, एक एक नदियां बहती हुई जा रही है, बड़े बड़े बड़े, फिर कई बार वो देखता है कि आपने थोड़ा देख लिया तो थोड़ा और नीचे करके बड़े बड़े बड़े, वो और थोड़ा दिखा के जाएगा, फिर आप भी सोच रहे हैं यार कितना टाइम हो गया, बीवी ने बड़े ही नहीं खिलाए कभी, तो फिर भी हरे कृष्णा ने दिए, उसमें कांदा लहसुन है, हरे कृष्णा ने। तो कई बार कई पूछ भी लेते हैं उसमें कांदा लहसुन है क्या। तो ऐसे एक एक नदियां बहती जाती बहती जाती। तो आपने अभी उनको नहीं कहा है कि आप आओ बहो यहां पर, नहीं, लेकिन वो जैसे इच्छाएं आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। तो इसको भगवान कहते हैं काम प्रविशंति, कि ऐसी इच्छाएं आप कहीं पर भी जाओ, ये ऐसी इच्छाएं आपके सामने बहती रहेंगी अलग अलग प्रकार से। और ये जो दूसरा चित्र है इसको कहा है काम कामी, कि वो भटक रहा है, ढूंढ रहा है खरीदने के लिए बटाटा वाड़ा भी, कि नहीं मेरे को खाना ही है यहां वहां, उसको बोलते हैं काम कामी। तो कई बार कई लोग है ना ये फिलॉसफी यूज करते हैं कि भाई हम नहीं भागे थे, वो इंद्रिय भोग मेरे पास आया था, तो मैं तो समुद्र के समान हूं, वही श्लोक यूज करते हैं, मैं तो समुद्र के समान। लेकिन समुद्र नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, वो खुद पानी को नहीं निगल लेता, वो ऊपर क्लाउड्स को देता है पानी, तो वो आगे का स्टेप नहीं जानते वो लोग। तो ये उदाहरण से आपको समझ में आया। तो अब जैसे हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो कई शॉपिंग ऐसी होती है कि हमने ध्यान में ही नहीं रखा, लेकिन वो सामने कुछ ये सब कुछ आ रहे हैं तो हमने शॉपिंग कर ली, और कई एकदम पिन पॉइंटेड हमारा पूरा टारगेटेड शॉपिंग होता है, तो उसको बोलते हैं काम कामी, जा जाके ये दुकान से वो दुकान से ये दुकान। तो ये होते हैं काम कामी, डिजायर्स टू फुलफिल द डिजायर्स। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जो कामनाएं प्रवेश कर रही हैं, अर्जुन तुम उनसे प्रभावित नहीं हो, वो तो उनका काम है। अरे ये भौतिक संसार में ये जो कामनाएं हैं, ये जो विषय वस्तु हैं, ये इनका काम है, ये आके बहते जाना, तुम पकड़ो मत उसको, लेकिन डोंट होल्ड ऑन टू दोज डिजायर्स, एज दे हैव कम दे विल गो ऑल्सो, लेट देम कम एंड लेट देम गो। वो वड़ा वाला आया है, जाने दो उसको, उसको रुकाओ मत, रुका लिया फिर गड़बड़ होता है, फिर काम कामी चालू हो जाता है। तो ये सुंदर श्लोक पहले स्कंद में, एतद् हि आतुर चित्ताना मात्रा स्पर्श इच्छया मुहु भव सिंधु प्लव दृष्टो हरिचर्याणु वर्णनम। नारद मुनि व्यासदेव जी को श्लोक कह रहे हैं कि जो बद्ध जीव, जिनके चित्त आतुर है, आतुर चित्ता नाम, क्यों आतुर चित्त है, हर समय एंग्जाइटीज, फुल ऑफ केयर्स एंड एंग्जाइटीज, क्यों आतुर चित्त है, क्योंकि उनके उनकी इंद्रियां हैं और इंद्रियों की भोग वस्तुएं हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में उनकी इच्छा है। बहुत एक साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं नारद मुनि कि इंद्रियां और भोग वस्तुएं, लेकिन उसके बीच में अगर इच्छा नहीं हो तो भोग वस्तुएं कुछ नहीं करेंगे इंद्रियों को। तो मात्रा का अर्थ है विषय वस्तु, इच्छया का अर्थ है स्पर्श का अर्थ है इंद्रियां, और इच्छया का अर्थ है हमारी कामनाएं। तो वही आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं न काम कामी, जो काम कामी है वो कभी तुष्ट या संतुष्ट नहीं रह सकता। तो फिर यदि हम दो महत्वपूर्ण विषय लें, जो पिछले दो विषय हमने लिए थे उसके संदर्भ में, तो भगवान ये कह रहे हैं कि आज के श्लोक में एक तो है काम की प्रबलता, वो तो रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन की अचलता चाहिए. फियर्स फ्लो ऑफ डिजायर्स बट वॉट वी वॉन्ट इज रॉक स्टेडीनेस और ओशियनिक स्टेडीनेस ऑफ द माइंड. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. जैसे कि आप यदि जो आयुर्वेद या नेचुरोपैथी होता है उसके अंदर वो जो डॉक्टर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिकारक शक्ति, उसको उसकी वृद्धि करने के लिए औषधि ज्यादा देते हैं. क्यों? यदि वो हमारे अंदर डेवलप्ड है तो फिर कोई भी डिजीज हमको अटैक नहीं कर सकता. तो वैसे ही ये जो भगवान कह रहे हैं अचल प्रतिष्ठम, ये हमारा इम्यून सिस्टम है, इसको हमको रॉक स्टेडी, एक अचल, एक समुद्र के समान बनाना है. तब जाकर भगवान कह रहे हैं कि हम उस शांति को प्राप्त हो पाएंगे. तो 2.66 में भगवान ने कहा था कि शांति किसे प्राप्त हो सकती है, या यहां पर यह कहा गया कि किसे नहीं प्राप्त हो सकती. नच भावयतः शांति, कि जिसके अंदर भावना नहीं है. भावना का अर्थ क्या है? कृष्ण भावना. जिसके अंदर कृष्ण भावना नहीं है उसके अंदर शांति नहीं. तो यही भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि केवल उसे वो इच्छाओं के ऊपर नहीं उठना है, उन इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाना है. और भगवान की सेवा में वो कब लगा पाएगा? जब वो कृष्ण भावना भावित बनेगा तब जाकर. इसलिए इस एक श्लोक में भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से अर्जुन को समझा दिए हैं कि एक योगी और एक कृष्ण भक्त में अंतर क्या है. एक योगी केवल वो प्रभावित नहीं होता, लेकिन एक कृष्ण भक्त जो है वो भावना के कारण उन इच्छाओं को घनश्याम की सेवा में लगाते हुए अपने आप को शुद्ध करता है. और फिर जो अगले बुधवार का हमारा श्लोक है 71, जिसके अंदर अब भगवान बताएंगे कि वास्तविक शांति प्राप्त करने कि कितने, एक नहीं, दो नहीं, तीन नुस्खे. यदि आपको जानना है तो ठीक इसी समय अगले बुधवार को आप मौजूद हो जाइएगा हरे कृष्ण मंदिर द्वारका सर्कल के पास हमारे गीतामृत के कार्यक्रम में. लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना समाचार कि वही कृपा का समुद्र हम सबको देने के लिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, जिनका आविर्भाव दिवस हम कल मना रहे हैं, गौर पूर्णिमा. तो आप लोग सब आमंत्रित हैं इस गौर पूर्णिमा महोत्सव में. सुबह 5 बजे मंगल आरती से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, फिर उसके पश्चात दर्शन आरती, और फिर हाँ जब बीच में होगा दर्शन आरती, और फिर क्लास होगी सुबह, और शाम को फिर आपको यहाँ पर सूचित किया जाएगा अभिषेक, शाम का कीर्तन, और दिन भर कीर्तन चलने वाला है. हमारे कुछ भक्त यहाँ पर आयोजित किए हैं, पूरे दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र की ये नदी बहती रहेगी. तो यदि आपको चैतन्य महाप्रभु जैसे हरिनाम संकीर्तन में गोते लगाए, आपको गौर पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हरिनाम संकीर्तन में गोते लगाते हुए चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है, तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है. हम कृष्ण भक्तों के लिए, विशेष रूप से गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हम जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमारे युगावतार, जिनका आविर्भाव दिवस हम कल मनाने जाने वाले हैं. बोलो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय. हरे कृष्ण.